अनु, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? पल्लवी जब नीचे से सारे काम निपटाकर कमरे में आई तो आहना को कुर्सी पर बैठा देखकर चौंक गई। वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी। आहना भी पल्लवी की आवाज सुनकर अचानक चौंक गई। इतने में पल्लवी के साथ साथ छाया भी उसके पास आ गई और आहना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अनु, तुमने अब तक हाथ मुंह धोकर कपड़े नहीं बदले, ऐसे ही बैठी हो। चाची तो कह रही थी कि तुम आराम कर रही हो, फिर तुम ऐसे यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? आहना तब तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने उठते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, बस आराम ही कर रही थी। अभी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। अब सिर्फ फ्रेश होने से काम नहीं चलेगा जीजी, लड़के वाले आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं, तो अब आपको जल्दी से तैयार भी होना है और मम्मी ने आपके लिए ये साड़ी भेजी है। हाथ में एक साड़ी थामे अंतरा ने कमरे में कदम रखा। आहना ने सिर हिलाया और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद आहना को साड़ी पहनाते हुए भाभी ने बात छेड़ी, हमने सुना है लड़का बड़ा गंभीर है, तो हमारी अनु भी तो कितनी सीरियस है, दोनों एक दूसरे को कंपनी देंगी। पल्लवी ने अनु के चेहरे पर गहरी नजर जमाते हुए बात कही। उसके चेहरे के भाव जरा बदले थे। इतने में अंतरा ने मुंह बनाते हुए कहा, पर अगर दोनों सीरियस रहेंगे तो बातें और मस्ती कौन करेगा, कितना बोरिंग हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे दो लोग बोर्ड के एग्जाम देने बैठे हैं। तो तुम उनके बीच अपनी दिलचस्प बातों का तड़का लगा देना, भाभी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। वहीं उनकी बात सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और नाराजगी से उसने अपने गाल फुलाते हुए शिकायती लहजे में कहा, मुझे ऐसा मौका कहाँ नसीब होने वाला है भाभी, मम्मी ने तो मुझे सख्त हिदायत दी है कि जब तक वो लोग घर पर होंगे मुझे भूलकर भी उनके सामने नहीं आना है। पर ऐसा क्यों? अंतरा की बात सुनकर पल्लवी चौंक गई और हैरानी से उसे देखने लगी। मम्मी कहती हैं कि हमारे घर में ऐसा ही होता है, जिस लड़की को देखने आए उसके अलावा बाकी कुंवारी लड़कियों को सामने नहीं आने दिया जाता, इस डर से कि कहीं किसी दूसरी लड़की को ही पसंद ना कर लें। बताओ भला, मेरी चांद सी सुंदर जीजी को छोड़कर कोई मुझे पसंद कर सकता है जो मुझ पर ही पाबंदी लगाई गई है? अंतरा ने जैसे ही बात पूरी की पल्लवी ने तुरंत ही उसे टोका, क्यों नहीं कर सकता, तुम भी इतनी प्यारी हो, पर ये बात तो गलत है। वही तो मैंने भी कहा, पर मम्मी ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। एक बार फिर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए जयंती जी की शिकायत लगाई। भाभी ने उसके फूले गाल को छुआ और बड़े ही प्यार से बोली, ओ हमारी प्यारी नंदरानी पर इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। और नहीं तो क्या भाभी, बताइए भला, ये भी कोई बात हुई कि मेरी जीजी को देखने लड़का आ रहा है और मुझे ही उसे देखने की इजाजत नहीं? अंतरा ने उदास चेहरा बनाया, जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा था उस पर, या जाने कितना अत्याचार किया जा रहा हो उस पर। उसको दुखी और उदास देखकर भाभी ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम इतना उदास क्यों होती हो, हम कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे, तुम चिंता नहीं करो। भाभी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उनका तो कोई शेड्यूल नहीं होता, पैसे कम देते हैं और बदले में जान निचोड़ लेते हैं, उनके पास तो वक्त भी नहीं होगा, अगर जीजी का रिश्ता उनसे जुड़ गया तो वो जीजी को वक्त कैसे देंगे? अंतरा का दिमाग अलग ही दिशा में दौड़ रहा था और काफी सीरियस लग रही थी वो। अंतरा का सवाल सुनकर भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा जी कह रहे थे कि उन्हें अपना खुद का क्लिनिक खोलना है, जॉब करके बस एक्सपीरियंस ले रहे हैं और क्लिनिक खोलने का प्रोसेस भी शुरू कर चुके हैं, महादेव की कृपा रही तो एक साल के अंदर खुद का क्लिनिक खोल लेंगे। ओह ऐसा क्या? अंतरा ने होठों को गोल करते हुए सोचने के अंदाज में कहा, जिस पर भाभी ने सहमति जाहिर कर दी। अंतरा को किसी का कॉल आया तो वो तुरंत ही वहां से निकल गई। हल्की फुल्की बातों के बीच आहना को साड़ी पहनाई गई, फिर भाभी और पल्लवी मिलकर उसे तैयार करने लगे। उनके बीच बातें अब भी हो रही थी पर आहना एकदम चुप थी, खामोशी से उनकी बातें सुनते हुए जाने किन्हीं ख्यालों में खोई थी। कुछ देर बाद आहना ने आईने में अपने अक्स को गहरी निगाहों से देखा। श्रृंगार किया जा रहा था, वो भी किसी और के लिए। उसके रूप को निखारा जा रहा था पर किसी और को पसंद आने के लिए। ये पहली बार नहीं था जब वो खुद को किसी और के लिए संवार रही थी, पर जाने क्यों, लेकिन इस बार कुछ अलग से एहसास थे। घबराहट अपनी चरम पर थी। इस बार तैयारियां भी पिछले दोनों बारों से अलग और खास हुई थी। उसके साथ श्रृंगार पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार तो बात पक्की होकर ही रहेगी। खैर, होना ना होना तो बात की बात थी, पर सबकी कोशिश तो पूरी यही थी कि आने वाले परिवार से उसका रिश्ता जुड़ जाए। उसने भी महसूस किया था कि इस रिश्ते पर सब खासा जोर दे रहे थे। बहुत सी उम्मीदें टिकी थी इस रिश्ते पर। सबका विश्वास था कि आने वाला लड़का उसके जीवन साथी के रूप में बेहतर चॉइस है। अब अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में लगे थे कि बात पक्की हो जाए, कहीं कोई कमी ना छूट जाए। आहना अलग ही कश्मकश में उलझी थी। मन की गहराइयों में कुछ बातें बैठी थी जो उसके डर का सबब बन रही थी। अजीब सी घबराहट थी और दिल बेचैन था। पेट में हलचल हो रही थी, शायद ज्यादा नर्वस थी इसलिए। उस पर पहली बार लड़के से मिलने वाली थी, शायद इसलिए घबराहट का ये आलम था कि सीने में मौजूद दिल की धड़कनें कभी एकाएक थम जाती तो कभी धौंकली जैसे धड़क उठती। हाल तो वहां का भी कुछ ऐसा ही था, पर शायद इससे थोड़ा जुदा। घबराहट और नर्वसनेस की वजह अलग थी, दिल में छुपे एहसास अलग थे, पलकों तले सजे ख्वाब जुदा थे, कुछ अलग से जज्बाते थे
और मन के किसी कोने में एक डर भी बैठा था कि जैसी उसने कल्पना की है क्या आहना वैसी ही होगी, क्या वो उसके जीवन साथी की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर सकेगा, क्या उनके दिल मिलेंगे और क्या ये रिश्ता जुड़ेगा। अनेकों सवाल और अनकहे अधूरे जज्बातें अपने दिल में छुपाए वो ड्राइविंग कर रहा था। बाकी सबके बीच बातें जारी थी पर अक्षय अपने ही ख्यालों में खोया था। 7.5 घंटे का सफर था और इतने लंबे सफर में थकावट लाजमी थी। बीच में एक दो जगह रुके भी थे और अब बस 10-15 मिनट का ही रास्ता बचा था। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही इचकोले खाते हुए रुक गई। अक्षय और अन्वय दोनों ने सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखा। कार को क्या हुआ अक्षय, ऐसे रुक क्यों गई? पीछे बैठी रूपाली जी ने भी कार के अचानक रुकने पर सवाल किया। पता नहीं मम्मी, देखना पड़ेगा, आप सब अंदर ही रहिए, मैं देखता हूँ क्या परेशानी है, अक्षय ने शांत स्वर में जवाब दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी नजर सामने के टायर पर पड़ी जो पंक्चर था। अक्षय देख ही रहा था कि अचानक टायर पंक्चर कैसे हो गया कि दूसरे तरफ से अन्वय भी निकलकर बाहर आ गया। क्या हुआ भाई? टायर पंक्चर हो गया, डिक्की से स्टेपनी और जैक लेकर आ, टायर चेंज करना पड़ेगा। ओके बॉस, अभी लाया। अन्वय तुरंत ही चाबी उंगलियों के बीच घुमाते हुए पीछे चला गया। कुछ देर में अन्वय और अक्षय ने मिलकर टायर बदल दिया था। वहीं दुकान के पीछे दीवार की ओट में खड़ी अंतरा की पैनी निगाहें सारे वक्त अक्षय पर ही टिकी थी। वो अक्षय को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाई। शांत स्वभाव है, समझदार भी है और टायर भी बदल लेता है खुद से, गुड। अंतरा की एक परीक्षा में अक्षय अनजाने तौर पर पास हो चुका था। अक्षय बाकी के टायरों को चेक करने के बाद कार में बांटने जा ही रहा था कि एक अनजानी सी मीठी सी कोमल आवाज उसके कानों से टकराई। हाय हैंडसम, अक्षय ने चौंकते हुए पीछे पलट कर देखा तो एक लड़की उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। अपने इतने करीब एक अनजान लड़की को देखकर अक्षय सकपका गया और हड़बड़ाते हुए अपने कदम पीछे की ओर घसीटे। जी जी, आप मुझसे बात कर रही हैं?
तुम्हारे अलावा दूसरा कौन हैंडसम लड़का है यहाँ? उस लड़की ने आगे आती अपनी जुल्फों को बड़ी ही अदा से पीछे को झटकते हुए सवाल किया। बेचारा अक्षय फटी आंखों से उसे देखने लगा। वो अभी समझ भी नहीं सका था कि क्या कहे कि इतने में दूसरे तरफ से अन्वय अक्षय के पास आ गया। क्यों नहीं है, बिल्कुल है, जरा अपनी नजरें तो घुमाइए। अन्वय को सामने देखकर लड़की सकपकाते हुए उस तरफ को देखने लगी जहां अंतरा खड़ी अपने प्लान की प्रोग्रेस पर बारीक नजर रखे हुए थी। अन्वय ने उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखा तो उसकी भौं सिकुड़ गई। उसने उसकी नजरों का पीछा किया और दीवार की ओट में छुपी अंतरा पर चली गई जो उसके लिए पूरी तरह से अनजान थी। अंतरा हड़बड़ी में पीछे को पलट गई पर अन्वय उसकी एक झलक देख चुका था और कुछ कुछ समझ भी चुका था। अन्वय की निगाहें गहरी हो गई और माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो इतना समझ गया कि इस लड़की का कनेक्शन उस लड़की से है जो दीवार के पीछे छुपी है। शायद ये उसी के कहने पर आई है, पर क्यों? इस सवाल का जवाब नहीं मिला था उसे, तो उसने बात की गहराई तक जाने का फैसला किया और उस लड़की के आगे चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ खो गई मैडम? लड़की ने सकपकाते हुए अन्वय को देखा। इतने में अन्वय फिर बोल पड़ा, हेलो मिस, मुझसे बात कीजिए। वो क्या है ना, मेरे बड़े भैया जरा भोले भाले हैं, लड़कियों से दूर ही रहते हैं। आप मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको, मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अन्वय का सवाल सुनकर उस लड़की ने संभलते हुए जवाब दिया, वो मेरा फोन ऑफ हो गया है तो एक कॉल करना था, बस इतनी सी बात, लीजिए मेरा फोन। अन्वय ने बेफिक्री से अपना फोन उसके तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने जाने किसे कॉल करके क्या कहा, पर 2 मिनट बाद ही अन्वय को फोन पकड़ाकर थैंक यू कहते ही वहां से चंपत हो गई। अन्वय ने तिरछी नजरों से एक बार फिर उस दिशा में देखा तो अब वहां कोई भी नहीं था। अन्वय ने सर झटका, फिर अक्षय की तरफ पलटते हुए बोला, भैया अब मैं ड्राइविंग करता हूँ, आप बैठिए। अक्षय बिना किसी बहस के पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट करते हुए अन्वय ने एक बार फिर उस दिशा में देखा था। दिखा तो कोई नहीं, पर किसी की परछाई जरूर नजर आई थी उसे और जहन में अनेकों सवाल लिए वो आगे बढ़ चुका था। दूसरी तरफ कार के आगे बढ़ते ही अंतरा दीवार की ओर से बाहर आ गई। अन्वय को याद करते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गई और मुंह बनाते हुए वो बड़बड़ाई, ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया, सारा प्लान बिगाड़ दिया मेरा, पर फिर भी मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। लड़के की नीयत बुरी नहीं, कैसे घबरा गया था उसे देखकर, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। और बात करने में भी कितना कतरा रहा था, शक्ल से भी कितना शरीफ लग रहा था, सेंसिबल भी लग रहा था। उन तीनों कंजरों जैसा नहीं था कि जरा सी बात पर आग का गोला बन जाए, खूबसूरत लड़की को देखते ही लाटपकाने लगे। अंतरा ने पहले अपने शिकार बने तीनों नमूनों को याद करते हुए बुरा सा मुंह बनाते हुए उन्हें कोसा, फिर अपनी स्कूटी स्टार्ट की और फुल स्पीड में दौड़ाई ताकि उनसे पहले खुद घर पहुंच सके। कमिंग सून।